नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप कुमार मिश्र न्यूज़ 18 हिंदी के हेल्थ पॉडकास्ट में एक बार फिर हाजिर हूं आपकी सेहत से जुड़े एक नए मसले के साथ। इन दिनों दिल्ली NCR सहित देश के कई शहरों में पोल्यूशन चरम पर पहुंच चुका है। वहीं दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी के बाद आबोहवा कितनी जहरीली हो जाएगी इसका अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी मुसीबत उनके लिए है जो अस्थमा के मरीज हैं, जिन्हें सांस की बीमारी है या पोस्ट कोविड स्टेज में है। इन तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए ये 2 महीने काटना किसी चुनौती से कम नहीं है। पॉल्यूशन की वजह से खड़ी इन चुनौतियों से कैसे लड़ें, अपनी सेहत को दुरुस्त किस तरीके से रखें, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर निखिल मोदी। डॉक्टर मोदी, आपका न्यूज 18 हिंदी के हेल्थ पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है।
जी शुक्रिया।
शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल के साथ।
जी,
दिल्ली NCR सहित देश के तमाम शहरों में सर्दी के साथ पॉल्यूशन ने भी अपनी दस्तक दे दी है।
जी,
कई शहरों में पॉल्यूशन का स्तर खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। ऐसे माहौल में अस्थमा के मरीजों की परेशानियां खासी बढ़ जाती हैं। इनकी सेहत दुरुस्त रहे इसको लेकर आपका क्या सुझाव?
हाँ जी, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक बताया, सर्दी आते ही पॉल्यूशन की बात हम ज्यादा करने लग जाते हैं। इसमें मैं एक चीज जरूर और बोलना चाहूंगा कि पॉल्यूशन का स्तर जो दिल्ली में है वो 12 महीने ही खराब रहता ही है थोड़ा बहुत। तो हाँ, इस टाइम पे ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जैसे सर्दी का मौसम आता है, हवा ठंडी होती है, तो हवा की विंड स्पीड भी इस टाइम पे कम हो जाती है। तो जो पॉल्यूशन की हवा क्लियर होते रहना चाहिए, वो क्लियर ना होने की जगह इकट्ठी हो जाती है। फिर साथ में पराली और ये जो बाकी चीजों की बात करते हैं तो उससे डेफिनेटली एड ऑन होता है ये प्रॉब्लम। तो जो हमारे एस्थमा क्या, मैं कहूंगा कि सांस की बीमारी के कोई भी मरीज हो, चाहे COPD भी हो, तो जैसे ही ये गंदी हवा, दूषित हवा अंदर जाती है, तो एस्थमा के मरीजों में जिनको एलर्जी की टेंडेंसी वैसे ही होती है सांस के रास्ते में, तो ये दूषित हवा जाने से और कंजेशन बन जाता है, म्यूकस ज्यादा बनता है, सांस के नलियों में दबाव ज्यादा हो जाता है, तो उनके अटैक सीवियर हो जाते हैं। जो नॉर्मली अपनी दवाइयों पे कंट्रोल रहते हैं वो रह नहीं पाते, और कंजेशन बढ़ने से उनको दवाइयों की जरूरत ज्यादा हो जाती है, और सीवियर अटैक के साथ साथ उसमें निमोनिया, इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती करने की भी जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है।
यह बात हुई कि पॉल्यूशन की वजह से हमें किस तरीके की परेशानी होती है।
जी,
यहाँ सवाल यह है कि दिल्ली NCR जैसे बेहद प्रदूषित शहरों में रहने वाले लोग इस पॉल्यूशन का सामना करते हुए सेहतमंद कैसे रहें?
देखिए, जब तक पॉल्यूशन का कंट्रोल हम ढूंढ नहीं लेते, पॉल्यूशन का लेवल कंट्रोल नहीं हो जाता, हालांकि नई नई चीजें करी जा रही हैं उसके लिए, बट टाइम लगेगा उसमें भी। तो जब तक के लिए हम एक्सपोज हैं इससे, तो सबसे सेफ चीज है कि जब तक हमें जरूरत ना हो हम घर से मिनिमम निकलें। अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो कोविड ने एक अच्छी हैबिट हमें सिखा दी है मास्क पहनने की। जो मास्क पॉल्यूशन के लिए हम काफी सालों से रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं, पॉल्यूशन में जा रहे हैं और आपकी सांस की बीमारी बढ़ने का चांस है उससे, तो आप मास्क पहन के निकलिए। तो मास्क, नॉर्मल मास्क भी जो होता है, जो कोविड को शायद ना रोक पाए, बट नॉर्मल मास्क से आप पॉल्यूशन की इन्हेलेशन इतनी कम कर सकते हैं कि आप काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरा, कुछ अच्छी हैबिट जो है, थोड़ा स्टीम लेना, अच्छे से पानी गर्म करके उसके गार्गल्स करना, जिससे आप ये सांस का रास्ता क्लियर रख सकें, और टाइमली अपनी दवाइयां लेना जिससे आपकी सांस की बीमारी की कंट्रोल ठीक रहता है। इन सब सिंपल स्टेप से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जी,
अभी आपने स्टीम लेने और गर्म पानी से गार्गल करने की सलाह दी।
जी,
हम उस दौर में जाएं जब कोविड अपने चरम पर था और हर शख्स स्टीम ले रहा था। उस वक्त स्टीम को लेकर खास तौर पर सचेत किया गया था। उस वक्त यहां तक कहा गया था कि स्टीम की वजह से गले में जख्म हो सकते हैं और ये जख्म ब्लैक फंगस की वजह बन रहे हैं।
जी,
जिसके बाद लोगों में स्टीम को लेकर एक खास तरीके का खौफ बैठ गया। ऐसे में स्टीम लेना कितना सही है या कितना गलत है? यदि सही है तो उसका सही तरीका क्या है?
देखिए, स्टीम को हम ऐसे नहीं ले सकते कि वो एक खराब चीज है। स्टीम का फायदा क्या होता है, जो भाप के रास्ते हवा अंदर जाती है, वो भाप अंदर जाके पानी बन जाती है जो अंदर फंसे हुए म्यूकस को ब्रेक करके क्लियर करने में हेल्प करती है। वो म्यूकस जो ब्लैक फंगस की बीमारी आई थी उस टाइम पे इसलिए बोला जा रहा था कि जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है फंगस के ग्रो करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट माना जाता है जिससे फंगस बढ़ सकती है। पर वो कोविड के टाइम पे हम इसलिए ज्यादा था उसका थोड़ा बहुत जो ENT वाले बोल रहे थे क्योंकि कोविड के टाइम पे या तो पेशेंट सीवियर कोविड में स्टीरॉयड्स पे रहे साथ में कोविड से इम्यूनिटी डाउन हुई तो वो ब्लैक फंगस वैसे ही मल्टीप्लाई ज्यादा होने लग गई थी बॉडी में। पर नॉर्मल इंसान में जिनको ये एलर्जिक प्रॉब्लम्स है उनमें स्टीम जो म्यूकस है आपका बहुत थिक हो जाता है जो फंसने लगता है तो उसको क्लियर करने में हेल्प करती है। तो इसमें ऐसा ब्लैक फंगस का रिस्क नहीं रहता क्योंकि आपकी इम्यूनिटी एज सच कोई कम नहीं है। और दिन में एक या दो बार सुबह शाम मैक्सिमम इतना स्टीम लेना बहुत है। ये नहीं कि हम हर दो घंटे में स्टीम 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 कर रहे हैं। स्टीम लेने के लिए भी तरीका ये है पानी गर्म करके आजकल तो स्टीमर की मशीन आती है जिससे आप डायरेक्टली स्टीम ले सकते हैं। या जो दूसरी चीज है कि आप नॉर्मल किसी भी बाउल में पानी गर्म करके एक टावल मुंह पे रख के आराम से स्टीम लेकर वो सेवन कर सकते हैं।
चलिए अब हम बात उनकी करते हैं जो बीते समय में कोविड की चपेट में आ चुके।
जी
इसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे मरीजों की है जिनके लंग्स सीधे तौर पर गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। अब इस दीपावली में कोविड का कहर झेल चुके इन मरीजों को किस तरीके से एहतियात बरतने चाहिए जिससे वे किसी दूसरी तरीके की कॉम्प्लिकेशन में ना फंसे।
जी थैंकफुली इस टाइम पे अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो कोविड के केसेस बहुत कम हैं। तो नए कोविड के केसेस तो कम होने के कारण उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और मोस्टली केसेस जो हैं वो तो प्रिकॉशन आइसोलेशन और वो करेंगे तो उससे वैसे भी प्रोटेक्टेड रहेंगे इस पॉल्यूशन से। जो एक मेजर पॉपुलेशन का पार्ट है जो कोविड हो चुका है जिनको जो पोस्ट कोविड स्टेज में है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उनके भी सांस की नलियों में और लंग्स में अभी कहीं ना कहीं थोड़े से जो कोविड की सूजन और वो सब रह गई है तो वो भी जैसे अस्थमा के मरीज ज्यादा खांसी और सांस की दिक्कत को होने के लिए प्रोन है वैसे ही कोविड के बाद वाले मरीजों को भी खांसी और सांस की दिक्कत ज्यादा होने के चांस है और इन्फेक्शन और म्यूकस फंसने की दिक्कत होने के चांस ज्यादा है। तो उनको भी जैसे हम अस्थमा वालों को कह रहे हैं वैसे ही प्रिकॉशन मास्क लगा के बाहर निकलना थोड़ा अपने आप को हेल्दी रखना थोड़ी रेगुलर एक्सरसाइज करना और ये थोड़ी बहुत स्टीम लेना ये सारी चीज़ें फायदा करेंगी। और कोई भी सिम्टम आने पे इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करें ताकि कुछ भी हो तो जल्दी ट्रीटमेंट होने से उसको कंट्रोल किया जा सके।
अस्थमा या सांस के मरीजों को एक एडवाइस बहुत कॉमनली दी जाती है कि हो सके तो कुछ टाइम दिल्ली NCR के बाहर गुजारिए।
जी
इस कमेंट पर कोई खास प्रतिक्रिया?
जी जिनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाता एलर्जी तो उनको कई बार हम एडवाइस करते हैं क्योंकि उनको फिर बहुत हैवी दवाइयां देनी पड़ती हैं कई बार सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए इवन स्टीरॉयड्स का भी देना पड़ जाता है। तो अगर ऐसा देना ऐसे की जरूरत पड़ती है तो वो और हार्मफुल हो सकता है हाई डोज स्टीरॉयड देना। तो उस केस में ये बोला जाता है कि आपके सिम्टम्स ऐसे ही कंट्रोल हो जाए तो दिल्ली NCR से कुछ टाइम के लिए आप बाहर चले जाइए और जैसे ही पॉल्यूशन थोड़ा कंट्रोल हो तो आप वापस आ सकते हैं।
अब बात ग्रीन कैकर्स को लेकर करते हैं। यह दावा है कि इनसे 30% पॉल्यूशन कम होगा।
जी
मौजूद इसके दिल्ली में मौजूदा दौर पर जो पॉल्यूशन का स्तर है वैसे में ग्रीन कैकर्स दिल्ली वालों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं?
देखिए पॉल्यूशन का लेवल ऑलरेडी सीवियर से काफी हाई है हमारा जो हम PM2.5 के लेवल को मेजर करके जो बताते हैं हर टाइम सीवियर और वेरी सीवियर इनफैक्ट क्रिटिकल कैटेगरी में रहता है हमारा जो पॉल्यूशन का स्तर है। इस टाइम पे हमने अगर क्रैकर्स जलाए क्रैकर्स पे बैन नहीं रखा तो वो जो हार्म आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो मैं भी यही एडवाइस करूँगा कि पटाखे तो हमें बिल्कुल भी नहीं चलाने चाहिए।
आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए कोई खास संदेश देना चाहेंगे?
देखिए सिनेरियो को लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि पॉल्यूशन की बात हम हर साल इस वक्त पे जरूर करते हैं पर पॉल्यूशन का जो स्तर जो हार्मफुल है वो 12 महीने दिल्ली में ऐसा रहता है। हमें अपनी तरफ से जो भी छोटी छोटी चीज कर सके जिससे पॉल्यूशन कम कर सके वो हर टाइम करते रहना चाहिए। जैसे सरकार की नहीं हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में वो कुछ ना कुछ मदद करे। साथ ही जब तक पॉल्यूशन हाई रहता है अपना अपनी फैमिली के बचाव के लिए जब भी बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, पटाखे बिल्कुल ना जलाएं, और बाकी अगर कुछ भी हो तो थोड़े जो अपने रेगुलर एक्सरसाइज और स्टीम और बाकी अच्छी डाइट से अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें ताकि दिक्कत ज़्यादा ना आए। कोई भी दिक्कत आने पे जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें ताकि दिक्कत वो आगे ना बढ़े।
अब तक आपको ये साफ हो गया होगा कि पॉल्यूशन के बीच खुद को दुरुस्त किस तरीके से रखना है। सेहत की बात में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी सेहत से जुड़े नए मसले के साथ जल्द फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। और डॉक्टर मोदी, हमसे जुड़ने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, शुक्रिया।